ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेद् मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ब्राह्मणे देवाय गोब्राह्मणे हिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम् चौथा स्कंद अध्याय 28 श्लोक नंबर 23। पशुवत् जवनैः एषः नियमानः शुकं खेयं अन्यद्रवन् अनुपथः शोचन्तः भृशाम् आतुरः। पशुवद्यवनैरेष नियमनः शुकं खेयम् अन्यद्रवन् अनुपन्थः शोचन्तो भृशमातुरा। पशुवद्यवनैरेष नियमनः शुकं खेयम् अन्यान् द्रवान्यनुपन्थः शोचन्तो भृशमातुरा। पशुवद्यवनैरेष नियमनः शुकं खेयम् अन्यान् द्रवान्यनुपन्थः शोचन्तो भृशमातुरः। सब धन्यवाद। पशुवत पशु के समान, जवने जवन के द्वारा, ऐसा यह मतलब पुरंजन नियमानः बंदी बना कर ले जाया गया। शोकम अपने, खेयम घर, अनंद्रवन पीछे पीछे, अनुपन्थः उसके सेवक, शोचन्तः विलाप करते, भृशम अत्यधिक, आतुरः अत्यंत दुखी। अनुवाद और तात्पर्य अभयचरण भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की कोई नेता के लिए हमें जय ध्वनि कितना जोर से देते हैं, अब प्रभुपाद के लिए कितना जोर से देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की, तब जाकर हुआ, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है। अनुवाद। जब जवनगण राजा पुरंजन को पशु के भांति बांधकर उसे अपने स्थान को ले जाने लगे तो राजा के अनुचर अत्यंत शोकाकुल हो उठे। उन्हें भी विलाप करते हुए राजा के साथ साथ जाना पड़ा। तात्पर्य, जब जमराज तथा उसके दूत जीव को न्याय के स्थल ले जाते हैं तो प्राण, इच्छाएं आदि भी जीव के अनुचर के रूप में उसके साथ जाती है। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है। जब जीव जमराज द्वारा बंदी बनाकर ले जाया जाता है तुम उत्क्रामंतम, तो प्राण भी उसके साथ चला जाता है। प्राण अनुक्रमांति, और जब प्राण निकल जाता है प्राणम अनुत्क्रामंतम, तो सारी इंद्रियां सर्वे प्राणः भी साथ चला जाती है। अनुत्क्रामंति, जब जीवात्मा तथा प्राण निकल जाता है तो पंच तत्वों से उत्पन्न पदार्थ का पिंड पीछे छूटा रह जाता है। जब जीवात्मा न्यायालय में पहुंचता है, जहां जमराज तय करता है कि उससे कैसा शरीर मिले, आधुनिक विज्ञानी इस विधि से अपरिचित है। प्रत्येक जीव इस जन्म में अपने कर्म के लिए उत्तरदायी है, और मृत्यु के बाद उसे जमराज के दरबार में ले जाया जाता है, जहां वह यह तय करता है कि उसे किस तरह का अगला शरीर मिले। यद्यपि स्थूल शरीर छूट जाता है, किंतु जीवात्मा तथा उसके इच्छाएं एवं उसके विगत कर्म के फल उसके साथ साथ जाता है। यह तो जमराज पर निर्भर करता है कि पिछले कर्म के अनुसार वह उसे कैसा शरीर प्रदान करे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्रन मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरोन वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदन सगना ललिता श्री विशाखानीतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते पेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। प्रातःकालीन सत्संग पर श्री श्री कृष्ण बलराम का मंदिर का ओर से हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। चर्चा चल रही है श्रीमद् भागवत के चतुर्थ की अध्याय 28 श्लोक नंबर 23। चर्चा का विषय जो है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री जोनि प्राप्ति। लेकिन आज का जो श्लोक है, इसी श्लोक में कर्म और कर्म फल का ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें प्रभुपाद ने क्या मेंशन करते हैं, किस प्रकार कर्म का फल प्रत्येक व्यक्ति को लगता है और कर्म फल किस प्रकार लगता है प्रत्येक व्यक्ति को। कृपा करके आप लोग थोड़ा पास पास में बैठिए, क्योंकि पीछे में थोड़ा कुछ भक्त लोग खड़े हैं। हम इतना जानकारी आप लोग को देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पीछे बैठना ज़्यादा मानते हैं, लेकिन जान लेना चाहिए। मैं बहुत सारा जगह पे एग्जाम्पल देता हूँ, सारा संसार का लोग पीछे का गियर लगाना चाहते हैं, बैक गियर, कोई आगे गियर लगाना नहीं चाहता है। और संसार में जितने से वो रिश्ता है, वो सारा रिश्ता हमें जोड़े है सिर्फ हमको नरक लेकर जाने के लिए। जितने से वो हमें रिश्ता जोड़ते हैं सांसारिक जीवन में, भक्त लोग के लिए नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। सारा संसार का जो लोग जितने सब हमारे साथ रिश्ता जोड़ते हैं, सारा रिश्ता हमको जोड़ते हैं सिर्फ नरक लेकर जाने के लिए। कोई ऐसा रिश्ता जुड़ा नहीं जो कि हमें प्रभु का धाम को लेकर जाने के लिए। कैसा आप समझोगे? इसलिए कहते हैं सारा संसार का लोग लगे हैं पीछे, हर दिन कोई ना कोई रिश्ता जोड़ता है। तो सारा रिश्ता जोड़ते हैं क्या बोलते हैं, चलो आज पिकनिक चलते हैं, चलो आज पार्टी बनाते हैं, चलो आज पार्क में बैठते हैं, चलो आज सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, सही, चलो आज दारू पी लेते हैं। कोई ऐसा रिश्ता मिला है, कभी ऐसा रिश्तेदार मिला है कि जो रिश्ता बोलता है चलो आज मंदिर चलते हैं, चलो आज भागवत पढ़ते हैं, भागवत सुनते हैं, चलो आज गीता पाठ करते हैं, चलो आज वहाँ पे हाँ प्रभुपाद जी आए हैं मिलना है, ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति मिला है अपना जीवन में बताइए? जितने सब रिश्ता मिले हैं, सारा रिश्ता बैकगियर पीछे को लेकर जाता है। इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतो दिश्यते यतो नाम अपि सिद्धानां कश्चन व्यतीतः ततो हो। हजार हजार लोक है, लेकिन कितने लोग भगवान को समझते हैं? और तत्वों से, जो व्यक्ति तत्वों से समझ लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तीसरा, यहाँ पे हम चर्चा करेंगे जन्म और कर्म। पहले जानना चाहिए हमारा किस प्रकार जन्म होता है, और हमारा जन्म का साथ साथ हमारा कर्मफल हमारे साथ अटैच है। ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, साइंटिफिक एग्जाम्पल आप लोग को समझ सकते हैं। साइंटिफिक एग्जाम्पल कैसा है? प्रत्येक व्यक्ति के साथ कर्मफल अटैच है। कर्मफल कोई व्यक्ति नहीं तोड़ सकता है। तोड़ सकते हैं आप? जितना से वो बैठे कोई तोड़ सकता है कर्मफल? और कितना जन्म का नहीं, 84 लाख जोनी का जन्म का कर्मफल अभी भी आपको मिल सकता है और मिल रहा है। लेकिन इस जन्म में आप अपना कर्मफल को तोड़ सकते हैं। एक ही उपाय सिर्फ है, सिर्फ एक ही उपाय है कलयुग में। क्या है? ये नाम आपका कर्मफल को संपूर्ण विनाश कर सकता है, संपूर्ण कर्मफल को। और भगवान ही आपका कर्मफल को तोड़ सकते हैं, और कोई नहीं तोड़ सकता है। कर्मफल को तोड़ने वाले व्यक्ति एक ही है, भगवान कृष्णा। कोई देवता नहीं तोड़ सकते हैं। कितना अच्छा पिता माता हो तोड़ नहीं सकते हैं, अच्छा पत्नी हो तोड़ नहीं सकता है, अच्छा पति हो तोड़ नहीं सकता है, अच्छा बेटा हो तोड़ नहीं सकता है, अच्छा बेटी हो तोड़ नहीं सकता है, अच्छा रिश्तेदार हो तोड़ नहीं सकता है, और देवता लोग भी नहीं तोड़ सकते हैं। कौन तोड़ सकता है? भगवान कृष्णा। इसलिए उनका शरण में आना। इसलिए कहते हैं, भगवान कहते हैं, मैं जो काम कर सकता हूं मेरा नाम भी वही काम कर सकता है। आप कैसा समझोगे? गीता में प्रमाण है, भगवान कहते हैं मेरा शरण में आने मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट होता है, मेरा नाम करने मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट होता है। कौन बता सकता है? गीता में है, गीता में एक ही श्लोक में भगवान बोलते हैं मेरा शरण में आने मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है। 18 चैप्टर 66 नंबर श्लोक में वर्णन आता है। क्या आता है? अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मुखे स्वामी माशुच, संपूर्ण पाप को मैं नष्ट कर सकता हूं। अहम त्वाम, अहम मतलब आप मेरा शरण में आओ। माशुच डर मत, भय मत करो, मेरा शरण में आओ, आने मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है। गीता में यह प्रमाण दिए, मेरा शरण में आने मात्र से पाप नष्ट हो जाता है। और भागवत में क्या कहते हैं? भागवत में कहते हैं नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तन करने मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है। तब इसलिए कहते हैं हरि से बड़ा हरि का ये शिक्षा है। इसलिए प्रभु का नाम लेने मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है। और दूसरा हाथ में कहते हैं हम चाहते हैं, हम अपना कर्म को मंगल करना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है मंगलमय कर्म हो जाए, मंगलमय कर्म हो जाए। मंगलमय कर्म करने करोगे तब मंगलमय होगा, अमंगल कर्म करके मंगल हो नहीं सकता है। जिस प्रकार धर्म करोगे तो अधर्म नष्ट होगा, अधर्म का जगह पे धर्म नष्ट नहीं हो सकता है, धर्म के जगह पे अधर्म आ नहीं सकता है। ये प्रमाण है। और प्रत्येक व्यक्ति संसार में जन्म से लेकर लास्ट तक अधर्म करता है और बोलता है मैं धर्म कर रहा हूं। उसी प्रकार अमंगलमय कर्म करता है, प्रत्येक व्यक्ति अमंगल कर्म करता है और बोलता है मैं मंगल कर रहा हूं। मंगलमय कर्म करना पड़ेगा। मंगलमय कर्म क्या है? प्रभु का नाम। इसलिए जब हनुमान जी जब गया था लंका, लंका में चार तरफ घूम कर आया, आके विभीषण का घर का सामने खड़ा होके दरवाजे का पास से कान को लगाया, कान को लगा के क्या सुना? राम का नाम। और विभीषण सुबह का समय में बैठ के प्रभु का राम का नाम जप रहे थे। तब हनुमान जी क्या किया, दरवाजे को टुकराया। पहले का टाइम पे कोई मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप में भेज दे, कोई ईमेल नहीं करने के लिए नहीं था कि कॉलिंग बेल घर पे नहीं लगाओ। अभी का टाइम पे कॉलिंग बेल ये सब हो चुका है, पहले समय पे ऐसा नहीं था। तब हनुमान जी दरवाजे को टुकराया, टुकराने के बाद आवाज देने के बाद विभीषण भी आश्चर्य हो गया। सुबह का समय प्रातः मुहूर्त में कौन आकर इसको आवाज दे रहा है और मेरा को भगवान का नाम करने में डिस्टर्ब करा रहा है? तो विभीषण भी आश्चर्य होके फिर उठ कर गए और दरवाजा को खोले। दरवाजा खोलने के बाद हनुमान जी खड़े हैं, दोनों का वार्तालाप हुआ। तब ये सुबह का समय था, ये मंगल करना चाहता हो, मंगलमय कर्म करो। पहले मंगलमय कर्म है, पहले सुबह उठ के पहले दर्शन करते हो भगवान को, दर्शन करने मात्र से आपका मंगल हो जाता है। आपका संपूर्ण दिनचर्या का जितना सब कर्म है संपूर्ण मंगलमय चलेगा। और दूसरा है, भगवान को दर्शन नहीं कर पाते हो तब सुबह उठकर इमीडिएटली भगवान का नाम जपो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम मात्रण मंगल, मंगल ही मंगल, नाम मात्रण, और नाम ही आपका मंगल करेगा। और हमें अपना कर्मफल को कैसा तोड़ सकते हैं, और अपना कर्मफल किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति साथ लगता है, जन्म का बाद कर्म कि कर्म का बाद जन्म, बताइए। कर्म जैसा किया इसी प्रकार जन्म मिलेगा, ये प्रमाण है। जिस प्रकार कर्म अभी भी करते हो और हर व्यक्ति के साथ कर्म का फल अटैच है। एक ही एग्जाम्पल देने से समझ सकते हैं, बहुत सारा चीज एग्जाम्पल है। एक ही तो एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं धृतराष्ट्र के बारे में। धृतराष्ट्र पिछले जन्म में क्या किया था, पिछले जन्म में 50 जन्म का फल अभी उसको मिला। सब लोग को जानकारी है कि नहीं, यस और नो? बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बारंबार ये टॉपिक का बताते नहीं, क्योंकि बहुत सारा चीज इसमें चर्चा करेंगे समय का ऊपर। यह है धृतराष्ट्र 50 जन्म का पहले जंगल में गया था शिकारी का, तब जब धनुष लगाया तीर उठाया तब एक चिड़िया को मारने के लिए था। चिड़िया बैठा और चिड़िया जहाँ बैठी थी तब वहाँ पे क्या था, उसका क्या था, अंडे था। और कितना, 100 अंडे। तब उनका तीर वो चिड़िया में नहीं लगी, किस में लगी, अंडे में। तो वो जन्म का फल अभी मिला, उसका सामने युद्ध क्षेत्र में सामने उनका जवानी बच्चा है, सब जवान है ना, कितने साल की, ज्यादा से ज्यादा 30-35 उम्र की, सब जवान। उसका सामने धृतराष्ट्र के सामने अभी उसका ये कर्म का फल अभी मिला, 100 बच्चे को क्या हुआ, मार दिया गया। 50 जन्म का फल अभी मिल रहा है। और आप बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभु मैं 8 दिन हो गया माला जप रहा हूं, मेरा मन नहीं लग रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं, बोले एक साल हो गया माला जपते जपते माला सफेदी से काला भी पड़ गया, लेकिन मेरा मन से कालापन नहीं हट रहा है। ऐसा कितना जन्म का फल अभी, एक दिन में लोग सोचते हैं एक दिन में मिल जाए, कितना जन्म का फल नाश करने का शक्ति। भगवान का भजन करो गारंटी है, भगवान का नाम का इतने शक्ति आप कल्पना नहीं कर सकते। हमें सोचते हैं, हमारा पहले तो हमारा भगवान का नाम का प्रति विश्वास नहीं है, भगवान को विश्वास, भगवान का ऊपर विश्वास होना दूर की बात है, भगवान का नाम का ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। अब भगवान का नाम का इतने शक्ति, हर शास्त्र वेद महापुराण भागवतम गीता और 4 वेद सारा चीज में वर्णन है, 108 उपनिषद में भी वर्णन है नाम का शक्ति कितना है। जब पढ़ेंगे तब हमको ये मालूम पड़ेगा। और प्रत्येक व्यक्ति के साथ कर्मफल ये है कि हुआ धृतराष्ट्र का, धृतराष्ट्र का कितना जन्म का ये हुआ। दूसरा विदुर, विदुर को भी इसका श्राप मिला। श्राप मिलने के बाद कौन सा जात में जन्म लिया, कौन सा परिवार में जन्म लिया, दासी पुत्र शूद्र परिवार में। तब ये जो श्राप मिला है ये मंडूक ऋषि ने श्राप दिया था, और पिछले जन्म में मतलब बचपन में थोड़ी से कुछ क्या कर्म किया था, एक ही पतंग को एक ही कील लगाई दिया था। शास्त्र का अनुसार प्रमाण दिया जाता है 14 साल तक कोई भी बच्चे कुछ भी पाप अपराध करता है नहीं लगना चाहिए, लेकिन इनको लगा। कहते हैं ज्ञान वशतः पाप और अज्ञान वशतः पाप प्रत्येक व्यक्ति को लगेगा, लेकिन अभी हमको जानकारी नहीं, इसलिए कहते हैं ज्ञान वशतः भक्ति और अज्ञान वशतः भक्ति भी प्रत्येक व्यक्ति को लगेगा। अज्ञान वशतः भक्ति करते हैं वो भी लगता है, फल मिलता है, और ज्ञान वशतः भक्ति करते हो वो भी लगता है। और ज्ञान वशतः पाप और अज्ञान वशतः पाप कैसा लगता है, आपको एग्जाम्पल देने से आप समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक ही दीवार है, ये दीवार पे एक बिजली का तार है, छोटे बच्चा है 1 साल की, 1 साल की बच्चे ये तार को पकड़ेगा तब क्या करंट छोड़ देगा, एस और नो? आवाज नहीं आ रहा है, करंट छोड़ेगा नहीं। थोड़ा प्रभु जी को आसन दीजिए बैठने के लिए। तब करंट छोड़ेगा नहीं। बच्चा अज्ञानी है, 1 साल की बच्चा है, अज्ञानी तो है, तो अज्ञानी होने के नाते तार को पकड़ लिया, करंट छोड़ेगा नहीं, ये है अज्ञानवशतः पाप। और ज्ञानवशतः पाप, आप जानते हो ये तार में बिजली है और तार को पकड़ लिया, करंट छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, ये है ज्ञानवशतः पाप और अज्ञानवशतः पाप। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को, और वृंदावन धाम में और ज्यादा, वृंदावन धाम में और ज्यादा इसका पावर है, ये जानना चाहिए। इसलिए कहते हैं यहां पे अज्ञानवशतः तो कोई आकर भक्ति करता है ना, उसको मालूम नहीं है ये मंदिर है कि क्या है, लेकिन उसका हजारों गुणों का पुण्य कर्म, पुण्य फल मिलता है। वो जानकारी नहीं है, आके भगवान प्रणाम कर दिया, आके मंदिर को परिक्रमा कर लिया, आके वृंदावन परिक्रमा किया, भगवान को प्रणाम किया, सत्संग में बैठा, कुछ मालूम नहीं है, लेकिन उसका पुण्य फल मिल जाता है। इसलिए कहते हैं ज्ञानवशतः भक्ति अज्ञानवशतः भक्ति प्रत्येक व्यक्ति लगता है, और ज्ञानवशतः पाप अज्ञानवशतः पाप प्रत्येक व्यक्ति लगता है। तब साइंटिफिक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं किस प्रकार, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, प्रत्येक व्यक्ति के साथ कर्मफल कैसा अटैच है। व्यक्ति सोचता है ऐसा क्यों होता है हमारे जीवन में, हम बहुत सारा चीज अपना जीवन में बहुत सारा चीज कर रहा है, लेकिन अपना जीवन में क्यों ऐसा हो रहा है। लोग सोचते हैं, बोलते हैं हमें अपना बिजनेस सही से चला रहे थे, अरे बीच में क्यों ब्रेक हो गया, कि अच्छा घर गृहस्थी चल रहा था, बीच में क्यों झगड़ा हो गया। हर चीज कर्मफल, कितना जन्म का कर्मफल, और कौन किसी परिवार में जन्म लेगा वो उसी कर्म का अनुसार, वो कर्म इसी प्रकार किया, कौन किसका बाप बनेगा, कि कौन किसका बेटा बनेगा, कौन किसका बहू बनेगा, कौन किसका पुत्री बनेगा, ये सब कुछ कर्म का ऊपर डिपेंड है। और कौन सा जन्म में कौन सा कहाँ पे थे, अभी कहाँ पे जन्म लिया, ये सब कुछ पहले से सारा कुछ फिक्स है। तब मैं बताने का चाहता हूँ, तब साइंटिफिक कैसा है, एक ही पिता माता होते हैं, इसको कितना बार मैं एग्जाम्पल दे दिया हूँ, पिता माता एक ही होते हैं, एक ही होने का नाते उन्हीं का समझो 5 बच्चे की 2 बच्चे की 10 बच्चे हुए, 5 बच्चे होने का नाते 5 बच्चे का नेचर, नेचर मतलब स्वभाव एक ही होता है नहीं। अच्छा, तो 5 बच्चे का शरीर का गठन एक ही होता है नहीं होता है, क्यों नहीं, एक ही जगह से आए, एक ही तो मशीन है, एक ही तो प्लेटफॉर्म है, माँ का गर्भ से निकले, कोई बाईपास होकर नहीं निकला है कि नहीं, जैसा कोई शहर में भीड़ हो जाता है तो बाईपास रोड निकल जाता है, तो यहाँ पे तो कोई भीड़ नहीं था, गर्भ से एक ही लाइन से निकला, तब स्वभाव एक ही नहीं है और शरीर का गठन भी एक ही नहीं। कारण क्या है, प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कर्म को लेकर, कर्म फल लेकर आया, कर्म इसी प्रकार कर्म किया, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, कोई ज्ञानी, कोई बुद्धिमान, और जन्म होते हुए उसके लिए 10 नौकरानी रखा जाता है, जन्म होते हुए इस प्रकार कर्म क्या है, बच्चा को संभालने के लिए 10 नौकरानी रखा जाता है, और कोई बच्चा रास्ता का ऊपर रो रहा है, कोई पकड़ने वाला है नहीं, सब कुछ कर्म फल है कि नहीं, विश्वास करते हैं कि नहीं, है प्रत्येक व्यक्ति का साथ कर्म फल अटैच है। और यह कर्मफल को तोड़ने के लिए सिंपल है, प्रभु का भजन और कुछ नहीं। मैं बारंबार बता चुका हूं, एक एग्जाम्पल में दिया है, पिछले बार भी दिया था, अनजान कर्म का फल कैसा लगता है, अनजान अज्ञानवशतः किसी प्रकार कर्म फल लगता है। एक राजा था, एक ही राजा ब्राह्मणों का लंगर में महल के आंगन में भोजन करा रहा था। सारे ब्राह्मण को राजा ने बुलाया, सभी ब्राह्मण को, आज लंगर है, लंगर मतलब हम लोग हमारा भाषा में क्या बोलते हैं, भंडारा है ना, और इस्कन में फिस्ट, कब फिस्ट है ठीक है। तब राजा का रोसिया खुले आंगन में भोजन पका रहा था, जो आंगन था वो खुला था, कोई छात पात्र नहीं था। तो उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजर रही थी। पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा के लिए, चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रोसैया जो लंगर ब्राह्मण के लिए पका रहा था, उस लंगर में सांप के मुख से निकले जहर की कुछ बूंद खाने में गिर गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वह ब्राह्मण को, ब्राह्मण जो भोजन कर रहे करने आए थे, उन सबको जहरीला खाना खाने ही मौत हो गए। अब जब राजा को सारे ब्राह्मण की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्महत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। इसमें अब ऊपर बैठे जमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाता में जाएगा। राजा जिसको पता ही नहीं चला कि खाना जहरीला हो गया कैसा, राजा को पता नहीं, और रोसैया को, जिसको पता ही नहीं चला खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया कैसा। फिर चील जो जहरीला सांप ले जा रहा था राजा के ऊपर ही गुजर रही थी और उसको भी मालूम नहीं है। फिर सांप भी जिसने अपने आत्मरक्षा के लिए जहर निकाला है उसको भी पता नहीं चल रहा। बहुत दिन तक यह मामला जमराज का पास है, फाइल पड़ा रहा है। फिर कुछ समय का बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए आए। उन्होंने किसी महिला से पूछे अभी भंडारा कहाँ चल रहा है। कुछ लोग पूछते हैं ना, अभी तो इस्कन में महीना भर तक भंडारा चल रहा है, कहाँ मिल रहा है। तो पूछते पूछते तो महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, बोला इसी रास्ते में आपको निकल जाना है, ये रास्ता है, राजा का घर पे भोजन मिल रहा है। लेकिन साथ साथ ब्राह्मणों से भी यह कह दिया, देखो भाई जरा ध्यान रखना, वो राजा आप जैसे ब्राह्मण को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे उसी समय जमराज ने फैसला कर दिया, डिसीजन ले लिया कि उन मृत ब्राह्मण की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाता में जाएगा और उससे उस पाप का फल भुगतान होगा। जमराज के दूत ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों हुआ, जबकि उन मृत ब्राह्मण की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका, मतलब रोल भी नहीं थी। तब जमराज ने कहा कि भाई देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद होता है, सही होता ही नहीं होता है। अभी जैसे संसार में प्रत्येक व्यक्ति अभी पैसा कमाने में कितना आनंद लेता है, अभी जैसे थोड़ा बंद हो गया सब रो रहा है, मतलब पैसा नहीं मिल रहा है। इसलिए कहते हैं मनुष्य के लिए सुबह से शाम तक और जिंदगी भर तक, जन्म से लेके लास्ट तक टेंशन ही टेंशन ही टेंशन ही है, सही, कभी भी टेंशन फ्री नहीं होता है। लेकिन भक्त बन जाए तो, हाँ जी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर भी थोड़ा वो तो गृहस्थ लोग को थोड़ा सा चिंतन होता है, लेकिन ब्रह्मचारी को कोई चिंतन नहीं है, बिना टेंशन कुछ है नहीं, कुछ भी भाड़ में जाए कुछ भी है। तब यहाँ पे क्या है, तब जमराज ने कहा है, भाई देखो जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मण की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उसी रोसैया को आनंद मिला, ना ही सांप को आनंद मिला, ना ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला है। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप का कर्म का फल अब उस महिला के खाता में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से बुराई करता है तो उस व्यक्ति का पाप का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाता में डाल दिया जाता है। तब अभी से आपको सतर्क हो जाना चाहिए, वृंदावन धाम है। तब दूसरा कहते हैं, जब ये श्लोक में आता है तब गीता में एक श्लोक आता है, कर्माणि बाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन माम कर्म फलेषु संगम अस्तु अकर्मणि, इसमें चार चीज आता है। चार चीज क्या है? पहले आता है कर्मा, कर्मा कर्मण्य बाधिक अरस्तो, कर्म करना निश्चिंत है। बिना कर्म करके कोई रह सकता है? कर्म करना है, हो सकता है किसी भी जात में जन्म लिया हो लेकिन कर्म करना है। कर्म बिना कर्म करके रह नहीं सकता है। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, तुमको कर्म करना है और तुम जात में क्या हो? क्षत्रिय हो, जात तुम जात का जो कर्म है उसको निभाना है। क्या निभाना है? तुम क्षत्रिय हो मतलब युद्ध में लड़ना है। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा, मतलब मेरा परिवार और ये वंशधर मेरा गुरु सामने में खड़े है, सबको मारकर मेरा क्या फायदा? पहले संसार में प्रत्येक व्यक्ति कुछ भी करता है पहले फायदा के लिए सोचता है, सोचता है ना, पहले फल को सोचता है कि नहीं? कुछ भी अभी जैसा मार्केट है, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में लगाने का पहले सोचता है कितना ब्याज मिलेगा, पहले फल का बारे में सोचता है, पहले कर्म करे नहीं करे पहले फल का बारे में सोचता है। और अर्जुन यही भी प्रश्न पूछ रहा है, मेरा सामने ये सब खड़े हैं, मैं उनको मार के क्या फायदा होगा? भगवान कह रहे हैं तुम जात में क्षत्रिय हो, तुमको युद्ध में लड़ना है, युद्ध में लड़ना है, लड़ करके मर भी जाओगे तुम्हारे के लिए कल्याण, स्वर्ग में जाओगे, और लड़ करके जीत भी जाओगे तो वह राज्य मिलेगा, राजभोग मिलेगा। राजभोग नहीं मिलेगा मतलब राज्य को भोगना है, नहीं तो राजभोग समझ जाओगे, राजभोग अभी मिलेगा क्या, 12 बजे नहीं हुआ। तब कहते हैं, तब अर्जुन कह रहे, अर्जुन कह रहे मैं धनुष छोड़ के मैं भिक्षा करके अपना जीवन को बिता दो, मैं भिक्षा करके हाँ अपने जीवन को बिता सकता हूँ, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कह रहे नहीं, तुमको कर्म करना है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, स्वतंत्रता दिया गया है कर्म करने के लिए, लेकिन किस प्रकार कर्म? इसलिए गीता महात्म्य में एक श्लोक आता है, गीता महात्म्य के 7 श्लोक है, गीता महात्म्य के 7 श्लोक प्रत्येक व्यक्ति को याद रखना चाहिए। प्रत्येक भक्त को गीता महात्म्य के 7 श्लोक इसलिए प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन में, भगवद्गीता का इंट्रोडक्शन में बता दिए, और ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। और ये श्लोक प्रत्येक व्यक्ति, आप जब भगवद्गीता बांटने के लिए जाएंगे, ये गीता का श्लोक बताइए, गीता का एक श्लोक आप बताइए, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। भारत अमृत सर्वस्व विष्णु भक्त अधिनिशुता गीता गंग दोकंपित्व पुनर्जन्म अनाभिद्यते थे, ये श्लोक आप बोलते तो गीता लेगा ही लेगा। ये श्लोक में क्या व्याख्या आता है? ये व्याख्या आता है भारत अमृत सर्वस्व विष्णु भक्त अधिनिशुता, भगवान वक्ता है और अर्जुन श्रोता है, और ये गीता जो व्यक्ति पढ़ता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। गीता गंगा तो कंपित पुनर्जन्म न बीतते, गीता और गंगा जल समान है, लेकिन गंगा जल में एक बार डुबकी लगाओगे एक बार में आपका कलमशता मतलब पाप दूरीभूत है। हर दिन गंगा में डुबकी लगा नहीं सकते हैं, लेकिन हर दिन क्या कर सकते हैं? भगवद गीता को पाठ कर सकते हैं। इसलिए गीता का साथ है गंगा को समान किया गया, गीता भगवान का मुख से निकला और गंगा भगवान का चरण से निकला, दोनों समान है। मलिनम मोचनम पुंसा जलमस्थानम दिने दिने सकृत गीता मृतस्थानम संसार मलनाशनम, संसार से मुक्ति पाने के लिए चाहते हो तब गीता को पढ़िए, पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। जब गीता हमें पाठ करते हैं, जब डेली जो व्यक्ति गीता पढ़ता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए ये गीता महात्म्य के श्लोक को प्रत्येक व्यक्ति याद रखे, बताना चाहिए। अभी माराथन आएगा गीता बांटने के, सहज हो जाएगा। तो दूसरा है गीता, ये जो कर्मा ने बाधिकार स्थक किस प्रकार कर्म करना है, किस प्रकार कर्म करना है, तब गीता महात्म्य के 7वां नंबर श्लोक, एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एक देव देवकी पुत्र एव, एक मंत्र तस्य नामानि जाने कर्माणि अपेक्ष्यम तस्य देवस्य सेवा। प्रत्येक व्यक्ति कर्म करना है किस प्रकार? कृष्ण चेतनशील कर्म, कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए कर्म करना है। कृष्ण किस में प्रसन्न होंगे? संसार में लोग दान धर्म तपस्या सब कुछ करते हैं, लेकिन अपना अपना जिसी प्रकार वेद में बताया गया वेद का अनुसार कर्म करते हैं, करते हैं, सोचते हैं पुण्य कर्म मिल जाए ये हो जाएगा, लेकिन वो पुण्य करने से आपको कहां तक जन्म मिलेगा? हो सकता है मर्त्य जगत में जन्म मिलेगा, हो सकता है स्वर्गलोक में जन्म मिलेगा, हो सकता है ब्रह्मलोक में जन्म मिलेगा, लेकिन जन्म ही मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक का शरण में आ जाओ, एक का शरण में आ जाओ। इसलिए कहते हैं एक शास्त्र देव की पुत्र गीतम, देव की पुत्र गीत का आकार में गाया, भगवद गीता पढ़ो, एक शास्त्र, एक देव देव की पुत्र, एक का शरण में आओ। भगवान एक ही है, 2 नहीं 4 नहीं 10 नहीं, भगवान एक ही ब्रह्म द्वितीय नास्ति, इसलिए एक को पकड़ लो भगवान कृष्ण को। त तबरे एक मंत्र तस्य नामानि जानी, हजार हजार मंत्र करने का जरूरत नहीं, एक ही मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, एक ही मंत्र तस्य नामानि जानी, एक ही मंत्र, एक सब में कहा गया, एक ही दो नहीं कहा गया। भगवान भी यहाँ पे कहे गीता में क्या कहे, अहम त्वाम सर्व पाप माशुचो, मेरा शरण में आओ, एक ही यहाँ पे भी कहे। तब तो लास्ट में कहते कर्मान्य पैक्यम तस्य देवस्य सेवा, कर्म करो किस कृष्ण चेतनशील कर्म, कृष्ण के लिए, कृष्ण किस में प्रसन्न होंगे। एग्जाम्पल देते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए पहले उपाय क्या है, भगवान को भोग लगाओ, जो चीज बनाते हो इसको भगवान को ऑफर करो, उसमें भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और वो प्रसन्न होने का मात्र से आपके अंदर में प्रसन्नता आने लगेगा। भगवान को प्रसन्न करने का उपाय बहुत प्रकार के उपाय है, और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कलयुग में प्रभु का नाम में प्रसन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार भगवान प्रसन्न होते थे सत्ययुग में ध्यान, त्रेताया में यज्ञ में प्रसन्न होते थे, द्वापर में पूजा पाठ में प्रसन्न होते थे, और कलयुग में नाम संकीर्तन, कृते जत धायत विष्णु, त्रेताया में जजते मुखे, द्वापर परिचर्याम कलौत हरि संकीर्तनात्, कलयुग में हरिनाम कीर्तन से तृप्ति हो जाते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार कर्म करना चाहिए, ये साधु आचार्य और गुरु का वाक्य है, इस प्रकार कर्म करके हमें करना चाहिए, लेकिन अर्जुन मना कर रहा था, तो भगवान कितना बार भी इसको समझाए, लेकिन फिर दूसरा अर्थ में कहते हैं मां फलेशु कदाचन, दूसरा शब्द आता है मां फलेशु कदाचन, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति फल को आशा करता है ना, पहले फल को आशा करता है, पहले पेड़ लगाएं लही लगाएं, पहले फल को आशा कर, इसलिए महाराज युधिष्ठिर एक कहावत में कहे, क्या कहे, मरना सभी को है, मरना सभी को है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। आज का परिस्थिति में क्या है, भोजन सभी को चाहिए, भोजन सभी को चाहिए, लेकिन खेती कोई नहीं बनाना चाहता है, और पानी सभी को चाहिए, पानी बचाना कोई नहीं चाहता, दूध सभी को चाहिए, गाय पालना नहीं चाहता, छाया सभी को चाहिए, पेड़ लगाना कोई नहीं चाहता, बहू सभी की चाहिए, पर बेटी बचाना कोई नहीं चाहता, मुक्ति सभी को चाहिए, भक्ति करना कोई नहीं चाहता, कृष्ण को सभी मानते हैं, पर कृष्ण का आदेश को कोई नहीं मानता। सब आते हैं मंदिर जैसा आते हैं, आप देखिए सुबह सुबह इतने भीड़ हो जाता है, प्रणाम करने का जगह भी नहीं होता है भगवान को देखिए, लेकिन भगवान का मंदिर भी हजार साल से जा रहा है, लेकिन प्रभु का आदेश को पालन नहीं करता है, तो क्या होगा, प्रभु आदेश देते हैं भगवद गीता पढ़ो, मेरा आदेश यही है, भगवद गीता पढ़ के अपना जीवन में उतारो, यही है, जब हम ये करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो। तो हम लेकिन पहले से हमें सोचते हैं हमारा पहले फल कैसा मिलेगा, प्रत्येक व्यक्ति फल का आशा रख के पेड़ लगाना चाहता है, फल को आशा रख के बिजनेस करना चाहता है, फल पहले फल को प्राप्त करने के लिए, लेकिन भगवान यहाँ पे मना कर दिए, तुम कर्म करो, फल देने का अधिकार मेरा हाथ में है, मैं फल दूंगा, मेरा हाथ में है और मैं देता हूँ, जिस प्रकार कर्म करोगे कर्म का अनुसार। इसलिए एग्जाम्पल देते हैं, मिर्ची का पेड़ लगाएंगे तो कोई आम नहीं मिलेगा, कटहल नहीं मिलेगा, अपुल नहीं मिलेगा, ऑरेंज नहीं मिलेगा, मिर्ची का पेड़ से क्या मिलेगा, सही है ना, इसलिए हमें कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, भक्ति का बीज लगाना चाहिए, और भक्ति उगेंगे सा, भगवान का भक्ति मतलब सेवा। और दूसरा अर्थ में कहते हैं माम कर्म फल हेतुर, तुम कर्म फल के कारण मत बनो, कर्म फल का अर्थ प्रत्यक्ष परिणाम, यदि कर्म फल का अर्थ प्रत्यक्ष परिणाम माना जाए तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल प्रयास करना है, उस प्रयास से यदि थोड़ा सा परिणाम प्राप्त हो तो भी निराश मत होना, यदि अधिक परिणाम प्राप्त हो तो गर्वित मत होना। भगवान कह रहे हैं कि हमें कर्म के परिणाम के कारण नहीं बनना है। ये एग्जाम्पल देते हैं, भगवान राम का आदेश का अनुसार समुद्र का ऊपर पोल बंधा गया, बंधने का टाइम में हनुमान जी सोच रहे थे कि उनके कर्म का परिणाम बहुत अधिक है, क्या अधिक है, बड़े बड़े पत्थर उठाकर फेंक रहे थे ना, वो सोच रहे थे मैं बहुत बड़ा कर्म कर रहा हूं, लेकिन एक ही गिल्लहरी क्या किया, रेत लेकर डाला है कि नहीं। लेकिन हनुमान जी का ऊपर और गिलहरी का ऊपर, भगवान दोनों का ऊपर समान समान कृपा किया। ऐसा नहीं कि उसको ज्यादा, उसका समान सम दृष्टि से। गिलहरी अपना ताकत लगाकर सेवा कर रहा है और हनुमान जी अपना ताकत लगाकर सेवा कर, दोनों को भगवान कृपा कर। ये है अपना जिसी प्रकार जिसी भाव आपका अंदर जितने शक्ति है, थोड़ा से क्यों नहीं हो, भगवान का सेवा में लग जाना चाहिए थोड़ा से। इसलिए कहते हैं बहुत सारा विदुर का घर में जाकर भगवान ने क्या खाए, केला का छिलका और साग की पत्ता, ठीक है। लेकिन दुर्योधन का घर पे 56 भोग तो लगाया था, तो भगवान मुख मोड़ कर आगे विदुर का घर पे। ये है, इसलिए कहते हैं भगवान को प्रसन्न करना है भक्ति श्रद्धा और प्रेम से, और भगवान भक्ति श्रद्धा प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न करने के लिए और ज्यादा सिंपल है प्रभु को भक्ति और प्रेम और श्रद्धा का। इसलिए एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं भगवान को श्रद्धा प्रेम और भक्ति से कोई प्रणाम करता है, प्रणाम करने मात्र से उसका भी पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को हो सकता है पुनर्जन्म, लेकिन भगवान को एक बार प्रणाम करने मात्र से श्रद्धा प्रेम भक्ति से उसका भी पुनर्जन्म नहीं होता है। कितने बड़े गुह्य रहस्य है, इसलिए हमें जानना चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारा चीज इसमें बताया गया है। तब कर्म फल को तोड़ने के लिए उपाय सिर्फ यह सिंपल है, प्रभु का नाम कलयुग में, और प्रभु का नाम करके हम ये धरती से पार हो सकते हैं। और प्रभुपाद जी जो संस्था बनाए, ये शुद्ध सात्व की संस्था, और जानना चाहिए एक ही प्लेटफॉर्म में जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, बीमार नहीं, और ये अब्रह्म भुवनल का ब्रह्मलोक तक चला जाए फिर भी पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बारम्बार इस सर्कल का अंदर हमें घूमते रहेंगे कुछ भी हमें करें। इसी प्रकार कर्म को सोच विचार करके देखना चाहिए, अभी से हमको जान लेना चाहिए शास्त्र क्या बता रहा है, और शास्त्र का माध्यम से हमको कर्म करना चाहिए। शास्त्र जो बता रहा है इसी हिसाब से हमको करना चाहिए। अब मनमानी करते हैं और मनमानी ढंग से करेंगे तो मनमानी ढंग से फल मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं ना मनमानी जो भी कुछ कर लेते हैं, बोलते ऐसा क्यों मिल गया, और मनमानी ढंग से किया है, भगवान क्या बता रहा है ये जानना चाहिए। भागवत में प्रमाण है, महाभारत में प्रमाण है, गीता में प्रमाण है, वेद में प्रमाण है, उपनिषद में प्रमाण है, ये सारा चीज। हमें इतना सारा शास्त्र नहीं पढ़ पाते तो भागवत में पढ़िए, संपूर्ण भागवत शुद्ध सात्विक, और भागवत में संपूर्ण बनता गया आगे क्या होने वाले है, आगे क्या होने वाले है, और पहले क्या हुआ था, अभी क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, ये भागवत में हर चीज प्रमाण है। और पुरंजन का उपाख्यान में हमको ये बहुत सारा शिक्षा मिलता है। अभी से हमको प्रभु का भक्ति करें। और कार्तिक का महीना है, अभी पंचक चल रहा है, भीष्म पंचक में और कुछ बोल नहीं सकते, मेरा पास और एक था कुछ बोलने के लिए लेकिन समय हो चुका है। तब आप लोग को स्वागत करते हैं 15, 16, 17 जो भक्त लोग रहेंगे। तब 3 दिन का एक सेमिनार रखा गया है, क्या रखा गया सेमिनार, लीलामय भगवान। तब 3 टॉपिक रहेगा, 1 दिन आलारनाथ, 1 दिन साखी गोपाल, 1 दिन खिरचोरा गोपीनाथ, उनका बैकग्राउंड मतलब उनका विग्रह कैसा बना, कैसा लीला किए, इसका ऊपर चर्चा होगा 3 दिन। और कथा का बाद फिर भी सबके लिए जगन्नाथ प्रसाद। तब शाम को 5 से 6:30 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8:30 हो सकता है, 12 बुरा नहीं मानने का, लेकिन 3 दिन में आप लोग को भाग लीजिए और आनंद उठाए। हर बार जगन्नाथ कथा होता है लेकिन कार्तिक का महीना का अंदर हो नहीं पाया, सब महाराज लोग प्रभुपाद का डिसाइपल सब था भीड़ भाड़, इसलिए जो लोग रहेंगे कार्तिक का बात ये कथा सुनकर जाएं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, एक बार जय जगन्नाथ बोलिए, जय जगन्नाथ। रुद्रा श्रीमद भागवत महापुराण की, संवेद गौर भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, वृंदावन धाम की, गौर प्रेमानंदी।